अध्याय चार, अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, नदियों का महत्व। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियां यहां आदिकाल से ही मानव की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का साधन रही हैं। सिंधु व गंगा नदी घाटियों में ही भारत की मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व आर्य सभ्यता का जन्म हुआ है। नदियों के द्वारा कृषि के लिए सिंचाई व जल प्रपातों वह विद्युत गृह बनाकर विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। प्राचीन समय में नदियों द्वारा आंतरिक व्यापार होता था, लेकिन वर्तमान में आधुनिक यातायात साधनों का विकास हो जाने के कारण नदी जल मार्ग का महत्व कम हो गया है। नदियों से हमें पीने का स्वच्छ पानी, भवन निर्माण के लिए रेत, कांच उद्योग के लिए रेत व इसके रेत कण में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना व चांदी भी प्राप्त होते हैं। नदियों का कृषि उपज में भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं जिनसे अधिक पैदावार होती है। नदियों में मछली पालन उद्योग विकसित करके भोजन प्राप्त भी की जाती है। भारत के प्राचीन नगर नदियों के किनारे विकसित हुए, क्योंकि व्यापार करने में उनकी स्थिति सुविधाजनक थी। इसके अतिरिक्त हमारे देश में नदियों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। अधिकांश नगर, मंदिर और व्यावसायिक नगर इन्हीं नदी तटों पर अवस्थित पाए जाते हैं। अफवाह प्रणाली का विकास व नदियों का मार्ग परिवर्तन। अफवाह तंत्र का विकास कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें संरचना, भूतल का ढाल, जल की मात्रा, जल प्रवाह का वेग और आकार मुख्य हैं। भारत की नदियों के अफवाह क्षेत्र में प्राचीन समय से ही परिवर्तन होते रहे हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्तरी भारत की सभी प्रमुख नदियों का अफवाह उल्टा हो गया है। कई पर्वत निर्माणकारी हलचलों के कारण प्राचीन टेथिस सागर हिमालय पर्वत में परिवर्तित हो गया। कई प्रसिद्ध भूवैज्ञानिकों का मत है कि तृतीय महाकल्प में लघु हिमालय के पाद प्रदेश पर उसके समानांतर एक बड़ी नदी असम से पश्चिमोत्तर पंजाब की ओर बहती थी, जहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिंध प्रदेश की ओर मुड़ जाती थी। पेस्को तथा पिलग्रिम भूतत्ववेत्ताओं ने इस नदी को इंडो ब्रह्म और शिवालिक नाम दिया है। यह एक महानदी थी जिसकी घाटी टेथिस सागर का वह अति सकरा कटिबंध थी जो हिमालय के द्वितीय उत्थान के पश्चात बच गया था। इस नदी द्वारा जमाई गई अवसादी शैलों से ही हिमालय के तृतीय उत्थान के समय शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। सिंध व पंजाब की नदियों में परिवर्तन। भूवैज्ञानिकों का मत है कि शिवालिक श्रेणी के आविर्भाव के बाद भी एक उत्थानकारी हलचल पंजाब प्रदेश में हुई, जिससे इस विशाल नदी का क्रम भंग होने पर तीन सहायक प्रणालियों का विकास हो गया, जिन्हें सिंधु क्रम, पंजाब नदी क्रम और गंगा क्रम कहा गया। इस नदी क्रम के बाद भी इसमें परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए सरस्वती नदी दक्षिण की ओर बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। कालांतर में सरस्वती नदी का प्रवाह दिशा पूरब की ओर उन्मुख होती गई और वह प्रयाग में गंगा से जा मिली, तब से इसका नाम यमुना पड़ा। भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि ऐतिहासिक युग में सतलज और यमुना राजस्थान से होकर बहती थी। इसी प्रकार सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो गई है, वह नदी थी जो घग्घर की तलहटी को घेरे हुए थी और नाहन के निकट बहती थी। यमुना नदी के निकट उत्तर में स्थित करनाल के पश्चिम की ओर बहती थी। उत्तरी बीकानेर के सूरतगढ़ के पास ये दोनों नदियां मिलकर और हाकरा के नाम से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती थीं। ईसा युग के प्रारंभिक काल में सतलज नदी एक स्वतंत्र नदी थी जो सिंधु से अलग बहती थी, किंतु अब सिंध नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी पहले सीधे सिंध नदी में गिरती थी, लेकिन अब यह सतलज नदी में फिरोजपुर के निकट मिल जाती है। गंगा व उसकी सहायक नदियों में परिवर्तन। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। चौथी से छठी शताब्दी तक मौर्य और गुप्त राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र पटना एक बड़ा उत्तम नगर था, जो गंगा, सोन, घाघरा, गंडक और पुनपुन नदियों के संगम पर स्थित था। नदी के तट पर होने से यह एक प्रमुख बंदरगाह व व्यापारिक केंद्र था, लेकिन इसकी समृद्धि कालांतर में नष्ट हो गई। इसी प्रकार गंगा के डेल्टा पर गौड़ नामक स्थान 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, किंतु कालांतर में इसके चारों ओर दलदल फैल जाने से इसका महत्व कम हो गया। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी तक बंगाल के मुस्लिम बादशाहों की राजधानी और प्रसिद्ध बंदरगाह सतगांव त्रिवेणी नदी के निकट सरस्वती नदी पर स्थित था, किंतु सरस्वती नदी के सूख जाने से इसका महत्व भी घट गया। कोसी नदी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्णिया नगर के नीचे की ओर बहती थी, किंतु अब यह इसके 80 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहती है। तीस्ता नदी पहले गंगा नदी में गिरती थी और अब वह ब्रह्मपुत्र की सहायक के रूप में उससे मिलती है। पहले ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मार्ग ढाका नगर के पूरब की ओर था, लेकिन यह अपना प्रवाह मार्ग बदलती बदलती अब ढाका के पश्चिम की ओर बहने लग गई है। असम व उसके समीप की नदियों का मार्ग परिवर्तन। पेस्को ने एक तिब्बती नदी की कल्पना भी की है। उसका विचार है कि वर्तमान सांगपो तथा सिंध नदियां इसकी घाटी में मिली हुई थीं। उत्तर पश्चिम की ओर जाकर यह मध्य एशिया की ऑक्सस झील में जा गिरती थी। इसके समर्थन में उसने सांगपो की सहायक केई, रोंग, नियांग, सबकी आदि नदियों का उल्लेख किया है, जिनकी दिशा सांगपो की वर्तमान बहाव दिशा के विपरीत पश्चिम की ओर को है। पेस्को के अनुसार इस तिब्बती नदी का अपहरण पश्चिम पंजाब की अटक नदी ने किया है और उसके पश्चिम भाग को अपने में मिला लिया है। डी टेरा के अनुसार प्लिस्टोसीन हिमकाल के पूर्व काराकोरम एवं लद्दाख प्रदेश की नदियाँ पूर्व की ओर बहती थीं और सांगपो नदी के द्वारा चीन के जेचवान प्रांत में जाती थीं, परंतु असम की दिहांग नदी ने इसका अपहरण करके सांगपो को दक्षिण की ओर मोड़ लिया। ये दोनों विचार विवादास्पद हैं। भारत में अफवाह तंत्र के प्रकार व वितरण। प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ अफवाह तंत्र का आधार होती हैं। इन नदियों की प्रवाह दिशा, धरातलीय दशा, चट्टानों की संरचना जल की प्राप्ति मात्रा पर निर्भर करती हैं। भारत की नदियाँ अपनी सहायकों के आधार पर चार वर्गों में रखी जा सकती हैं। पहला, बाह्य प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तीसरा, तटीय नदियाँ। चौथा, आंतरिक नदियाँ। भारत के अफवाह तंत्र का अध्ययन प्रमुख रूप से बाह्य प्रायद्वीप व प्रायद्वीपीय भारत को अलग रखकर किया जा सकता है। पहला, विस्तार से बाह्य प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। उत्तर भारत के अफवाह तंत्र में हिमालय का महत्व अधिक है, क्योंकि हिमालय हिममंडित शिखरों अथवा हिमनदियों से उत्तर भारत की नदियां निकलती हैं। ये नदियां प्रायद्वीपीय नदियों से बिल्कुल भिन्न हैं। यह पर्वत प्रदेश से निकलकर पहाड़ी मार्ग में तीव्र गति से तोड़फोड़ करती हुई बहती हैं। अनेक स्थानों पर ये तंग घाटियां बनाती हैं। अपरदन से प्राप्त सामग्री को बहाकर लाती हुई ये नदियां मैदान में उतरती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है और इस सामग्री का निक्षेप करती हैं। हिमालय से निकली नदियां लाखों वर्षों से उत्तरी मैदान पर मिट्टी जमाने का कार्य करती आ रही हैं। भारत के इस विशाल मैदान को वर्तमान रूप प्रदान करने में इन नदियों का सक्रिय योग रहा है। हिमालय प्रदेश से निकलने वाली नदियां अनुगामी अफवाह नहीं रखती हैं। उत्तर भारत की अनेक नदियां ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणियों से भी पुराने काल की हैं। हिमालय पर्वत जो जो उभरते गए ये नदियां अपनी घाटी को गहरी करती हुई पूर्ववत बहती रहीं, अर्थात हिमालय के उत्थान से इनके प्रवाह में व्यतिक्रम नहीं पड़ा, क्योंकि ये नदियां उत्थान से भी अधिक तीव्र गति से अपनी घाटी को काटती रही हैं। पर्वत के उत्थान और नदियों के कटाव की क्रियाएं साथ साथ चलती रहीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि नदियों का प्रवाह निरंतर उसी रूप से जारी रहा। इसी कारण हिमालय श्रेणी में कई संकरे पथ या गहरी घाटियां हैं, जैसे गिलगिट के समीप सिंधु नदी की तंग घाटी जो 5,180 मीटर गहरी है। यह घाटी लंबवत अपरदन के कारण ही बनी है, क्योंकि इस घाटी के पहाड़ी पार्श्वों पर विभिन्न ऊंचाइयों पर नदी वेदिकाएं मिलती हैं। तंग घाटियों के निर्माण पर विद्वानों के विचार। उत्तर भारत की नदियों द्वारा तंग घाटियों के निर्माण के संबंध में विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि हिमालय पर्वत से पहले से ही भ्रंश एवं खाइयां उपस्थित थीं। नदियों द्वारा ये खाइयां थोड़ी और गहरी व चौड़ी कर दी गई हैं। अलकनंदा नदी की तंग घाटी का कुछ भाग भ्रंश क्षेत्र ही है। कुछ विद्वानों का विचार है कि हिमालय पर्वत के उठने के कारण पुरानी नदियों के लिए रुकावट उपस्थित हो गई और विशाल झीलों का निर्माण हुआ। बाद में उन झीलों का जलतल ऊपर उठने से ऊंचे भागों से उतरकर बहने लगा, जिससे गहरी घाटियां बनी। किंतु नदियों की ऊपरी घाटी में झीलकृत अवसाद के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते, अतः इस मत को समर्थन नहीं मिल पाया। उत्तर भारत की नदियां पहले तो श्रेणियों के समानांतर घाटी में होकर बहती हैं और बाद में एकाएक दक्षिण की ओर घूमकर समुद्र की ओर चलती हैं, जिसके कारण अनुप्रस्थ कंदराओं का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तरी भारत के अफवाह प्रकार। पहला, पूर्ववर्ती अफवाह। उत्तर भारत की कुछ नदियों के विकास में भौतिक रूपों का प्रभाव नगण्य रहा है, इसलिए यह अफवाह तंत्र पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र कहा जा सकता है। इन नदियों में नदी हड़पने के अनेक मनोरंजक उदाहरण प्राप्त होते हैं। गंगा की सहायक नदी भागीरथी ने तिब्बत की कई नदियों का जल हड़प लिया है। विद्वानों का अनुमान है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म दूसरी नदियों के जल हड़पने से हुआ। तीस्ता नदी ने भी तिब्बत की नदियों का जल हड़पा है। दूसरा, क्रमहीन अफवाह। दिवांग एवं लुहित नदियां ब्रह्मपुत्र नदी के साथ क्रमहीन जल अफवाह बनाती हैं, क्योंकि ये नदियां विपरीत दिशा में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। हिमालय प्रदेश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हिमालय के दक्षिण में बहने वाली नदियों ने उत्तर वाली नदियों के जल को हड़पा है। तीसरा, खंडित अफवाह। भारत के मैदान में भी नदियां लुप्त हो जाती हैं और बाद में पुनः धरातल पर बहने लगती हैं। इस प्रकार ये खंडित अफवाह का निर्माण करती हैं। भारत की सभी नदियां समुद्र पर डेल्टा बनाती हैं और कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इसको गुम्फित प्रारूप ब्रेडेड पैटर्न बनाती हैं। चौथा, अंतःस्थलीय अफवाह। इनलैंड ड्रेनेज। राजस्थान की रूपनारायण, बेंडा आदि नदियां अंतःस्थलीय अफवाह बनाती हैं। पांचवा, समानांतर अफवाह। गंगा के ऊपरी मैदान में नदियां समानांतर अफवाह रखती हैं। छठवां, आयताकार अफवाह। कोसी और उसकी सहायक नदियां आयताकार अफवाह रखती हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय जल अफवाह तंत्र, पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग अति प्राचीन और पठारी है। यहाँ की नदियों की घाटियाँ प्रायः चौड़ी व उथली हैं, क्योंकि यहाँ का ढाल बहुत कम है, इसलिए इतना लंबवत अपरदन नहीं कर सकी हैं जितना उत्तर भारत की नदियों ने किया है। इसलिए ये नदियाँ पार्श्ववर्ती अपरदन करने में संलग्न हैं। प्रायः सभी नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, अतः इनका अपरदन कार्य अब नगण्य रह गया है। इन पठारी भागों में यत्र तत्र सामान्य ऊंचाई वाले जलप्रपात मिलते हैं। कावेरी का सिवा समुद्रम जलप्रपात 90 मीटर ऊंचा है। मुहानों पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि निचली घाटी में इनकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है। पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा उल्लेखनीय हैं। दक्षिणी भारत के अफवाह तंत्र के प्रकार। पहला, अनुगामी अफवाह, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। दक्षिणी भारत का अफवाह तंत्र प्रमुखतः अनुगामी अफवाह तंत्र है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं। पेरियार, पोन्नमी, सारावती नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। पेरियार नदी का जल कृत्रिम रूप से बहाकर पूरब की ओर बैगाई नदी में ले जाया गया है। पश्चिम तटीय मैदान बहुत संकरे हैं, अतः इन नदियों की लंबाई बहुत कम है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश क्षेत्रों से होकर बहती हैं। ये भ्रंश क्षेत्र विंध्याचल श्रेणी के समानांतर हैं। विद्वानों का मत है कि इन भ्रंशों का आविर्भाव हिमालय की पर्वत निर्माणकारी हलचल के समय हुआ। इन भ्रंश क्षेत्रों में नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। दूसरा, अनुवर्ती अफवाह, सबसिक्वेंट ड्रेनेज। दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतक्रम से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई यमुना व गंगा में मिल जाती हैं। इनमें चंबल, केन, सिंधु, बेतवा और सोन नदियाँ उल्लेखनीय हैं। ये नदियाँ अनुवर्ती अफवाह बनाती हैं। मध्य जीवकल्प में इस प्रदेश की नदियाँ टेथिस सागर में बहुत सा अवसाद बहाकर जमा करती थीं। बाद में उत्तर भारत का निर्माण होने पर इस प्रदेश की नदियों ने गंगा नदी क्रम से संपर्क स्थापित कर लिया। तीसरा, अध्यारोपित अफवाह, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज। भूवैज्ञानिकों का विचार है कि दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल तथा बनास नदियाँ अध्यारोपित जल अफवाह का निर्माण करती हैं। आयताकार अफवाह, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। विंध्यन शैलों के क्षेत्र में आयताकार अफवाह प्रतिरूप मिलता है। पांचवा, जालीदार अफवाह, ट्रेलिस ड्रेनेज। पूर्वी सिंहभूमि के पुराने बलित पर्वत में जालीदार अफवाह मिलता है। छठा, अरीय अफवाह, रेडियल ड्रेनेज। अमरकंटक पर्वतों से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी अरीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। सातवां, वृक्षनुमा अफवाह, डेंड्रिटिक ड्रेनेज। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ वृक्षनुमा अफवाह का निर्माण करती हैं। आठवां, समानांतर अफवाह, पैरेलल ड्रेनेज। पश्चिमी घाट में पश्चिम की घाटियाँ लगभग समानांतर बहती हैं, इसको समानांतर अफवाह कहते हैं। उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ। शिवालिक पहाड़ियों के निर्माण के फलस्वरूप भारत का अफवाह तंत्र तीन भागों में विभक्त हो गया, जिनमें दो तंत्र उत्तर भारत में स्थित हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहला विस्तार से सिंधु नदी तंत्र। यह तंत्र विश्व के सबसे बड़े अफवाह तंत्र में से एक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसकी प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी, यह नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी सहायक नदियां सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब एवं रावी हैं। यह नंगा पर्वत के निकट से गहरा मोड़ बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु तंत्र की नदियां ब्रह्मपुत्र नदी से ठीक उल्टी ओर बहती हैं। जास्कर श्रेणी से निकलने वाली जास्कर नदी लेह के निकट इसमें मिलती है। जोजिला दर्रे के उत्तर की ओर से आने वाली नदी तथा काराकोरम के उत्तर की ओर जाने वाली स्यांग नदी फिरीय के निकट इससे मिलती हैं। सिगार और गिलगित अन्य सहायक नदियां हैं जो इससे मिलती हैं। यह नदी सिंधु के शुष्क प्रदेश में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से इस नदी में बाढ़ आ जाती है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई 2880 किलोमीटर तथा अफवाह क्षेत्र 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत पे यह 1270 किलोमीटर की लंबाई में बहती है तथा इसका जल प्रवाह क्षेत्र 321290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। झेलम नदी, यह नदी कश्मीर में शेषनाग से शुरू होकर उत्तर पश्चिम दिशा में 112 किलोमीटर तक बहती हुई उलर झील में मिल जाती है। इस झील से आगे निकलकर महान हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य में बहती हुई कश्मीर घाटी को सींचती है, इसलिए इसे कश्मीर की हरी भरी सुखद घाटी कहते हैं। बारामूला के आगे जाकर पाकिस्तान में प्रवेश से पहले अति गहरी घाटी बनाती है। संपूर्ण नदी की लंबाई 400 किलोमीटर है तथा अफवाह क्षेत्र 28,490 किलोमीटर है। इससे कश्मीर राज्य में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। इस पर अनेक सिंचाई व विद्युत योजनाएं विकसित की गई हैं। चिनाब नदी, यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी के ऊपरी भाग में चंद्र एवं भागा नामक दो नदियां मिलती हैं। ये लाहौल में बड़ा लाला दर्रे के निकट शुरू होती हैं और हादी के पास मिलती हैं। यह किस्वतवाड़ पर एक विकट मोड़ बनाती हैं और पीर पंजाल में गहरी कंदरा बनाकर पाकिस्तान में चली जाती हैं। यह भारत में 1,180 किलोमीटर बहती हैं तथा 26,755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल बहाकर ले जाती हैं। रावी नदी, यह नदी पंजाब की सबसे छोटी नदी है। यह कल्लू पहाड़ियों से 4,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। यह धौलापुर पर्वतमाला के उत्तरी भाग और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी ढालों का जल बहाकर लाती हैं। यह पठानकोट के निकट मैदान में उतरती हैं। यहाँ माधोपुर नामक स्थान पर इससे अपर बारी दुआब नहर निकाली गई है। तत्पश्चात यह नदी गुरदासपुर एवं अमृतसर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। आगे जाकर मुल्तान के निकट यह झेलम व चिनाब की सम्मिलित धारा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है तथा इसका अफवाह क्षेत्र 5,957 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास नदी, यह नदी कुल्लू पहाड़ियों से निकलकर रोहतांग दर्रे से बहती है, जो लगभग 5 मीटर चौड़ा है और 180 मीटर लंबा है। यह कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में बहती हुई पठानकोट के पूर्व के मैदान में उतरती है। आगे चलकर एक बड़ा मोड़ बनाती है और कपूरथला के निकट सतलज में मिल जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी है। इसका अफवाह क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा, गंगा नदी तंत्र, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण अफवाह क्रम है। यह देश के लगभग 1/4 भाग को जल प्रदान करता है। यहाँ भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है व कृषि का भंडार है। यहाँ पर जल विद्युत शक्ति की संभावना क्षमता 1.3 करोड़ किलोवाट से अधिक आंकी जाती है। गंगा नदी, इस नदी की मुख्य शाखा भागीरथी नदी गढ़वाल में गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग स्थान पर इसमें अलकनंदा मिलती है और यहीं से यह मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी को काटती हुई गंगा नदी के नाम से ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचती है। यह उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। ट्रेबो के मतानुसार यह 3 महाद्वीपों में सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कम से कम लंबाई 3,000 किलोमीटर है। मेगास्थनीज के अनुसार इसकी साधारण चौड़ाई 1 किलोमीटर है और गहराई 36 मीटर है। यह हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नदी है। इस कारण इसके किनारे पर गंगोत्री से लेकर मुहाने तक अनेक तीर्थस्थल स्थापित हैं, जिनमें हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी विशेष हैं। इसके किनारे उत्तर भारत के कुछ बड़े बड़े औद्योगिक तथा व्यापारिक केंद्र भी स्थित हैं। इनमें से कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता इत्यादि सुप्रसिद्ध हैं। गंगा नदी मैदानी इलाके के बीच में बहती है, इसलिए गंगा, यमुना, शारदा आदि अनेक नदियों ने बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं। गंगा नदी का मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद से है, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी के नीचे उतरकर गंगोत्री का पवित्र स्थान है। मुख्य हिमालय के कुछ उत्तर में जाह्नवी नदी निकलकर भागीरथी से गंगोत्री के निकट मिलती है। दोनों नदियां एक होकर बंदरपुंच व श्रीकांत चोटियों के बीच 4870 मीटर गहरी घाटी बनाकर बहती हैं। भूगर्भ शास्त्रियों की धारणा है कि गंगा का अफवाह पूर्वगामी है। यह हिमालय की श्रेणियों से भी पुराना है। कर्णप्रयाग के निकट इसमें पिंडार नदी मिलती है। आगे चलकर इसमें मंदाकिनी नदी मिल जाती है। इस प्रकार अलकनंदा अपने साथ अनेक सहायकों का जल लेकर देवप्रयाग के निकट भागीरथी में शामिल हो जाती है, जहां इसे गंगा कहते हैं। इसमें अनेक धार्मिक स्थान व प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलते हैं। प्रयाग के निकट यमुना, गाजीपुर के निकट गोमती, छपरा के निकट घाघरा व पटना के निकट सोन नदी इससे मिलती हैं। बाएं किनारे पर रामगंगा, घाघरा, गंडक, बड़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियाँ गंगा में गिरती हैं, जबकि यमुना, सोन और दामोदर इससे दाएं किनारे पर मिलती हैं। सोन, दामोदर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, शेष उत्तर भारत की नदियाँ हैं। इलाहाबाद से आगे पश्चिम पूर्व दिशा में बहने के बाद यह फरक्का के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं तथा कई शाखाओं में बट जाती हैं। भागीरथी, हुगली इनकी प्रमुख शाखाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हैं। इसकी एक शाखा पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल तक पहुंचने में यह नदी 2525 किलोमीटर बह चुकती है। इसका अपवाह क्षेत्र 861404 वर्ग किलोमीटर है। गंगा का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 51306 वर्ग किलोमीटर है। डेल्टा का समुद्री भाग घने जंगलों से ढका है। यह विश्व की सबसे अधिक व्यस्त नदी है। इसी नदी तट पर कोलकाता व हल्दिया बंदरगाह स्थित हैं। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से है। जगाधरी के निकट यह मैदान में आती हैं और गंगा के समानांतर बहकर इलाहाबाद के निकट उसमें मिल जाती हैं। दक्षिण की ओर से कुछ छोटे छोटे नदी नाले मिलते हैं। यमुना नदी की लंबाई 1385 वर्ग किलोमीटर है और यह एक घुमावदार मार्ग से बहती हुई चलती है। इसका अपवाह क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके प्रति भूतत्ववेत्ताओं का विचार है कि यह पूर्व काल में दिल्ली के पश्चिम तथा अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में बहती हुई थार में जाती थी और सरस्वती नदी की सहायक या मुख्य शाखा थी। यमुना के जल का उपयोग पश्चिमी पूर्वी यमुना तथा आगरा नहर को जल देने के लिए किया जाता है। दिल्ली, मथुरा, आगरा इस नदी पर स्थित बड़े व महत्वपूर्ण नगर हैं। मध्यकाल में यमुना नदी का परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व था, लेकिन रेल मार्गों की स्थापना से यह महत्व कम हो गया। चंबल, बेतवा, केन प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। रामगंगा नदी, यह गढ़वाल के पूर्वी भाग में नैनीताल के निकट से निकलती है। इस नदी का उद्गम एक हिमनदी से है। इस नदी में वर्षा ऋतु एवं शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा का बहुत अधिक अंतर मिलता है। यह नदी कालागढ़ के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली जिलों में से होकर बहती है। शिवालिक पहाड़ियों के कारण इसका अपवाह दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है और मैदान में उतरने पर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कन्नौज के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। यह नदी 600 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का जल सिंचाई के लिए अधिक उपयोग में नहीं आता है। घाघरा या करनाली नदी, यह नदी पहाड़ी क्षेत्र में करनाली तथा मैदान में घाघरा कहलाती है। यह मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर दक्षिण पश्चिम की ओर से हिमालय को पार करती है। मैदानी भाग में पहुंचकर इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं, पश्चिम की ओर करनाली तथा पूर्व की ओर शिखा, किंतु आगे जाकर पुनः दोनों मिलकर एक हो जाती हैं। आगे यह नदी अवध होती हुई छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। इस नदी के कई बार अपने मार्ग में परिवर्तन किया है। काली व शारदा नदी। काली नदी कुमायूं के उत्तर पूर्व भाग में मिलाम हिमनद से निकलती है, वहां इसे गौरी गंगा कहते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां धर्मा एवं लीसड हैं, जो अपने ऊपरी भागों में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हैं, किंतु मुख्य नदी में सरयू और पूर्वी या शारदा के नाम से पहाड़ियों के चक्कर लगाती हुई ब्रह्मदेव के निकट मैदान में प्रवेश करती हैं। खीरी में इस नदी की चार शाखाएं हो जाती हैं, अल, शारदा, ढहावर और सुहेली। शारदा नदी चक्करदार मार्ग बनाती हुई बहमर घाट के निकट घाघरा में मिल जाती है। इससे ब्रह्मदेव के निकट शारदा नहर निकाली गई है। राप्ती नदी। यह नदी नेपाल के पिछले भाग की ओर से निकलकर पहले दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी बरहज के निकट घाघरा में मिल जाती है। नेपाल से अनाज तथा लकड़ियां इस नदी द्वारा लाई जाती हैं। गंडक नदी। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी व मैदान में नारायणी कहते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां काली गंडक एवं त्रिशूल गंगा हैं। महाभारत श्रेणी को काटकर दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हुई शिवालिक श्रेणी को पार कर मैदान में प्रवेश करती हैं। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। यह अपने मार्ग परिवर्तन में अधिक चतुर हैं और कई बार इससे अपार हानि हुई है। कोसी नदी। यह पूर्वी नेपाल में शुरू होती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मुख्यधारा अरुण के नाम से गांसाई धान के उत्तर से निकलकर काफ़ी दूर तक पूर्व दिशा में बहती हैं। आगे चलकर इसमें यारू नदी तथा अनेक छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, जिनके उद्गम पर्वतीय हिमनदों में हैं। शिवालिक को पार कर यह छपरा के निकट मैदान में आती हैं और एक विशाल कछारी पंख बनाकर फैल जाती हैं। यह नदी 730 किलोमीटर लंबी है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी में बाढ़ें अधिक आती हैं, जिससे अपार धन जन की हानि होती है। इसके उद्गम क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। पठार से निकलने वाली गंगा क्रम की नदियां। चंबल नदी। विंध्याचल की पहाड़ियों में महोवा नामक स्थान के निकट से शुरू होती हैं और बूंदी, कोटा, धौलपुर होते हुए इटावा से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर यमुना में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियां काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास हैं। यह बरसाती नदी हैं और जहां पर यह कांप के क्षेत्र में से होकर गुजरती हैं, वहां बाढ़ के दिनों में बहुत अधिक कटाव करती हैं। इसलिए इसकी घाटी प्रसिद्ध बुरा स्थल के नाम से विख्यात हैं, जिसमें गहरे बीहड़ पाए जाते हैं। इस नदी की संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है। अब इस पर चंबल जल विद्युत योजना बनाई गई है। बेतवा नदी। इसको वेत्रापती नदी भी कहते हैं। यह भोपाल के निकट दक्षिण पश्चिम से शुरू होती है और भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालान होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इसके ऊपरी भाग में कई प्रपात हैं। इसकी संपूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है। झांसी से 23 किलोमीटर दूर पश्चिम में इससे बेतवा नहर निकाली गई है। केन नदी। यह कैमूर पर्वत से शुरू होकर बुंदेलखंड में से गुजरती हुई मुडाहा के उत्तर में थोड़ी दूरी पर यमुना नदी में जा गिरती है। सोनार एवं बियरमा नदियां इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। काली सिंध नदी। यह राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से निकलकर 416 किलोमीटर बहती हुई जगमनपुर से कुछ उत्तर की ओर यमुना में मिल जाती हैं। दक्षिणी टोंस या तमसा नदी। यह नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसाकुंड नामक जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई सतना नदी में मिल जाती हैं। यह कई जलप्रपात बनाती हैं, जिसमें से बिहार जलप्रपात 113 मीटर ऊंचा है। इसकी सहायक नदी का नाम बेलन है। यह इलाहाबाद से कुछ दूर आगे चलकर गंगा में मिलती हैं। सोन या स्वर्ण नदी, यह नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जिनमें से रिहंद, कुनहड़ आदि नदी प्रमुख हैं। वर्षा ऋतु में यह नदी विशाल आकार धारण कर लेती हैं। लगभग 1000 वर्ष पहले यह नदी गंगा में पटना के नीचे मिलती थी, किंतु अब यह गंगा नदी में दानापुर में 16 किलोमीटर ऊपर की ओर गिरती हैं। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। दामोदर नदी, यह नदी छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में आरंभ होकर पूर्व दिशा में बहती हैं। आसनसोल के निकट यह दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़ जाती हैं। डायमंड हार्बर के निकट यह फिर हुगली नदी में प्रवेश पाती हैं और इसी के निकट रूप नारायण नदी भी हुगली में जाकर गिरती है। दामोदर के उत्तर में क्रमशः अजय, मोर आदि छोटी छोटी नदियां हुगली में मिलती हैं। यह नदी 541 किलोमीटर लंबी है और 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सींचती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है। यह गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के पूर्व में शुरू होकर दक्षिण तिब्बत में पश्चिम से पूर्व की ओर 1290 किलोमीटर तक बहकर असम हिमालय को पार करती हैं। तिब्बत में यह सांगपो नाम से जानी जाती हैं। नामचा बरबा पर्वत के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती हैं। आगे पश्चिम की ओर असम घाटी में से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। मेघालय पठार के कारण यह दक्षिण की ओर घूमकर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र जिस स्थान पर हिमालय को काटती है वहाँ इसे दिहांग कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक मनास, मटेली, सुबनसिरी, लोहत आदि नदियां हैं। इसकी कई सहायक नदियां इसकी प्रवाह दिशा के विरुद्ध बहती हैं। तीस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी भाग में इससे मिलती है। दार्जिलिंग क्षेत्र में यह एक बड़ी नदी है। मणिपुर राज्य के उत्तरी भाग में शुरू होने वाला सुरमा नदी अनेक जलप्रपात बनाकर कछार जिले में पश्चिम की ओर मुड़ती है। बदरपुर पहुंचने पर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। आगे यह दोनों शाखाएं मिलकर संयुक्त धारा के रूप में यमुना में मिल जाती हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। सुरमा नदी के मिलाप के बाद इसको मेघना नदी कहते हैं। अंत में पद्मा और जमुना दोनों नदियाँ इसमें चांदपुर के निकट आकर मिलती हैं। ये संयुक्त धाराएं बहुत चौड़ी होकर एक बड़ी ऐश्वर्य बनाती हैं, जिसमें बहुत से द्वीप हैं। इसकी संपूर्ण लंबाई 2580 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी ने असम की उपजाऊ घाटी का निर्माण किया है। इस नदी में भयंकर बाढ़ें आती हैं, जिसमें असम राज्य को जनधन की अपार हानि उठानी पड़ती है। इसके समुद्र में गिरने के स्थान से लगभग 1280 किलोमीटर ऊपर डिब्रूगढ़ तक बड़े जहाज चल सकते हैं। वो छोटी नावें तिब्बत तक जा सकती हैं। यातायात तथा व्यापार के लिए यह एक राजमार्ग का काम देती रही हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की अपेक्षा यहाँ की नदियाँ छोटी हैं तथा कम संख्या में हैं। नदियों में पानी की मात्रा वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा के दिनों में नदियों में पानी अधिक रहता है और शुष्क दिनों में पानी बहुत घट जाता है। धरातल पठारी व चट्टानी है, इसलिए नदियों का तल पानी नहीं सोखता है और थोड़ी सी वर्षा होने पर नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और कभी कभी अचानक बाढ़ भी आ जाती है। नदियाँ कम गहरी हैं, इसलिए नाव योग्य भी नहीं है। इन नदियों की घाटियाँ चौड़ी हैं और इनकी अपवर्धन शक्ति लगभग समाप्त प्राय हो चुकी है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर तथा कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई गंगा व यमुना नदियों में गिरती हैं। कुछ नदियाँ अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेशों से निकलकर कच्छ के रन अथवा खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, महानदी, यह 858 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 132,050 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सियोनाथ, हसदेव, मंड और डूब उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलती हैं। जोंक व तेल दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं। यह डेल्टा में अनेक शाखाएं बनाकर बहती हैं। इसका डेल्टा अत्यंत उपजाऊ है। हीराकुंड, टिकरपारा व नराज इस नदी का प्रमुख बहुद्देशीय योजनाएं हैं। ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा नदियाँ। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं तथा वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कोयल और सांख नदियों से मिलकर बनी है। यह 705 किलोमीटर लंबी है। वैतरणी और ब्राह्मणी संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। स्वर्णरेखा नदी 433 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप की यह सबसे बड़ी तथा देश में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 1,465 किलोमीटर लंबी है। नासिक की पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थान है। वहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है व अनेक नदियों का पानी अपने में शामिल कर लेती है। पूर्वी घाट में थोड़ी दूर तक तंग घाटी बनाने के बाद यह आगे इतनी फैल जाती है कि इसमें कई द्वीप बन जाते हैं। राजमहेंद्री के निकट इसकी धारा 2.7 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ प्रणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा तथा इंद्रावती हैं। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद के निकट इसमें मिलती हैं। गोदावरी के निचले भाग में बाढ़ें आती रहती हैं। अपने इसी भाग में यह नाव्य योग्य हैं। इस नदी पर अनेक जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया गया है। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1,400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कोयना, यरला, वरणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये नदियां गहरी घाटियों में बहती हैं और वर्षा के दिनों में काफ़ी जल बहाकर लाती हैं। भीमा और तुंगभद्रा नदियों को छोड़कर शेष सभी नदियों में जल की मात्रा गर्मियों में काफ़ी घट जाती है। जल विद्युत योजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बड़ा महत्व है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टा गोदावरी के डेल्टा से मिल गया है। कावेरी नदी यह कुर्ग जिले में 1,341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में 805 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ उत्तर में हेमावती, लोकपावनी, सिमसा व अर्कावती, दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ, कबबीनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती हैं। यह शिवा समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर कावेरी का डेल्टा प्रारंभ होता है। यहाँ पर यह दो धाराओं में बट जाती है। इसका डेल्टा 3,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस नदी का धार्मिक व आर्थिक दोनों ही दृष्टि से काफी अधिक महत्व है। सिंचाई व जल विद्युत की दृष्टि से कावेरी बेसिन काफी अधिक विकसित है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, पहला नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थान मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है तथा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नर्मदा अमरकंटक से 1,057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर एक तंग गहरी घाटी में होकर बहती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। यह हाड़िया और मंधाता के बीच जलप्रपात तीव्र प्रवाह रखती है। जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों और कपिलधारा धुआंधार प्रपात का दृश्य बड़ा मनोहर है, जहाँ 23 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। नर्मदा का निचला भाग नाव चलाने योग्य है। यह भड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह एक पवित्र नदी मानी जाती है। दूसरा, ताप्ती। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुलताई नामक स्थान से 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है वह 64,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखती है। प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। तीसरा, साबरमती। यह 416 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है। यह तीसरी बड़ी पश्चिम प्रवाहित नदी है। आंतरिक जल प्रवाह। भारत के सीमित भागों में इस प्रकार का प्रवाह तंत्र मिलता है। लूनी नदी इसी प्रकार के तंत्र का अंग है। सांभर झील आंतरिक जल प्रवाह के रूप में है। लद्दाख पठार भी आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली रखता है। हरियाणा के पश्चिमी भाग व उत्तरी राजस्थान में सरस्वती नदी मरुभूमि में समाप्त हो जाती है। भारत के नदी बेसिन, द्रोणी। नदी बेसिन वह धरातलीय सीमा है जिसमें प्रवाहित होने वाली नदियाँ अंत में एक प्रमुख नदी में समाहित हो जाती हैं। इनको आकार के आधार पर तीन प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, प्रमुख नदी बेसिन। इनका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। दूसरा, मध्यम नदी बेसिन। इसका क्षेत्रफल 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य होता है। तीसरा, लघु नदी बेसिन। इनका क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। पहला, विस्तार से। प्रमुख नदी बेसिन। ऐसे बेसिन कुल 13 हैं। यह संपूर्ण रूप से देश की 80% जनसंख्या की सेवा करते हैं। इनमें देश के नदी जल का 85% भाग प्रवाहित होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंध तीन सबसे बड़े बेसिन हैं। प्रायद्वीपीय पठार के नदी बेसिन इस प्रकार हैं: नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ पर मिलता है। गोदावरी व कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र में, कावेरी व पेन्नार कर्नाटक में, ब्राह्मणी बेसिन झारखंड व उड़ीसा में, माही बेसिन व साबरमती बेसिन राजस्थान व गुजरात में अपना विस्तार रखते हैं। दूसरा, मध्यम नदी बेसिन। इनकी कुल संख्या 45 हैं, जिनमें से 4 देश के बाहर तथा 11 दो या अधिक राज्यों पर अपना विस्तार रखते हैं। इनमें से 17 नदी बेसिन 63,500 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना विस्तार रखते हैं तथा यह नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। शेष 24 नदी बेसिन का संबंध बंगाल की खाड़ी से है। इनका विस्तार 2,10,596 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। कुल मिलाकर मध्यम नदी बेसिनों द्वारा वे नदी बेसिनों के कुल क्षेत्र का 8% भूभाग पर विस्तार है। इनमें लगभग 12 लाख घन मीटर जल प्रवाहित होता है। तीसरा, लघु नदी बेसिन। इनकी कुल संख्या 55 है तथा लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग को घेरे हुए हैं। इनमें से अधिकांश का विस्तार पश्चिमी व पूर्वी घाट पर मिलता है। शेष मरुस्थलीय भूभाग पर विस्तृत हैं। इनका विस्तार भारतीय नदी बेसिन के कुल क्षेत्र का 9% है। इसमें 1270 लाख घन मीटर जल प्रवाहित होता है।